यहाँ सर्वभूत हिते रतः अनसूयाम महाभागाम तापसीम धर्मचारिणी प्रतिगृहणी स्वेदेही अब्रवींदी सत्तम। अत्रि मुनि श्री राम से कहते हैं अपनी पत्नी के बारे में, अपनी पत्नी का बहुत आदर पूर्वक परिचय देते हैं श्री राम को कि ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। अत्रि मुनि कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? और हाँ, अपनी पत्नी अनुसुईया के लिए। क्रोध है तो इन्हें कभी छोड़ भी नहीं सका है। सीता इन वृद्धा अनुसुईया देवी के पास जाए, तामिवाम सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीं अभिगच्छतु वैदेही वृद्धां अक्रोधनां सदा। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि ने बहुत अच्छा कहकर श्री राम से सीता की ओर देखकर ये बात कही। एवं ब्रवाणम तम ऋषिम तथेत्युक्त्वा स राघव सीताम आलोक्य धर्मज्ञां इदं वचनम अब्रवीन। अब क्या अत्रि मुनि सीता जी से कह रहे हैं कि हे राजपुत्री, अच्छा क्षमा करना, श्री राम ने सीता से कहा, श्री राम ने सीता से कहा कि हे राजपुत्री, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए, अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ। राजपुत्री श्रुतम त्वेतन मुनेरस्य समीरितम श्रेयोर्थमात्मना शीघ्रम अभिगच्छ तपस्विनी। जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनुसूया के नाम से विख्यात हुई हैं वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं, तुम शीघ्र इनके पास जाओ। अनुसूयति या लोके कर्म विख्यातिमागता ताम शीघ्रम अभिगच्छ त्वम अभिगम्याम तपस्विनी। तो आप लोग जानते हैं अत्रि मुनि के तीन पुत्र हैं और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप से जन्म लिया है और विष्णु जी ने दत्तात्रेय के रूप से जन्म लिया है और शिव जी ने दुर्वासा मुनि के रूप में जन्म लिया। तो तीन उनके जो है पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों उनके पुत्र बने हैं, है ना। तो कितने अत्रि मुनि कितने सम्मानित हैं, है ना। तो श्री राम सीता से कह रहे हैं कि तुम अनुसुईया देवी के पास जाओ, इनका आश्रय लो। श्री राम की ये बात सुनकर सीता धर्म को जानने वाली अनुसुईया के पास गई। सीता तो तन्वचा श्रुत्वा राघव यशस्विनी तामत्रि पत्नी धर्मज्ञां अभिचक्रामे मैथिली। अनुसुईया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थीं, उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थीं और सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। शिथिलाम बलिताम वृद्धाम जरा पांडुर मूर्धजाम शतम वेपमानांगीम प्रभाते कदली में। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनुसूया को प्रणाम किया। ताम तो सीता महाभागाम अनुसूयाम पतिव्रताम अभ्यवादयन अव्यग्रा स्वनाम समुदाहरण। सीता जी ने अपना नाम बताकर के अनुसूया को प्रणाम किया। उन तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। अभिवाद्य च वैदेही तापसीम ताम दमान्विताम बद्धांजलि पुटा हृष्टा परिपृच्छन् अनामयम्। धर्म का आचरण करने वाली सीता को देखकर बूढ़ी अनुसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हो। तदा सीताम महाभागाम दृष्ट्वाताम धर्मचारिणी सांत्वयन्त्य ब्रवीन वृद्धा दृष्ट्या धर्मम अवेक्षसे। हे सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये बहुत इसमें बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि श्री राम को जब वनवास मिला तो एक कारण ये भी था सीता जी के लिए कि अपने पति में दोष देखते हैं कि उनका युवराज के पद पर अभिषेक होना था, अभी वनवास मिल गया है ना, तो ये जो है इसमें एक दुर्भाग्य का भी दोष, स्त्री जो है अपने पति में दुर्भाग्य का दोष देखती है कि दुर्भाग्य है या कुछ और दोष निकाल सकती है ना। लेकिन सीता महारानी ने अपने इस आचरण से कि उन्होंने अनुसरण किया श्री राम का, तो इससे बहुत बड़ा ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ा गुण है कि पत्नी को अपने पति के दुर्भाग्य से भी नफरत नहीं करना चाहिए और उसको भी स्वीकार करना चाहिए, ये भी मेरा सौभाग्य, अपने पति के दुर्भाग्य को भी अपना सौभाग्य मान करके स्वीकार करना चाहिए। तो सीता जी ने जो है श्री राम के साथ ही अपना सौभाग्य माना कि वो जो भी दुख हो या कोई तपस्या का कार्य हो, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहूँगी, मेरा और कोई नहीं है संसार में आपके सिवा, मेरे लिए वही स्थान है जहाँ आप रहेंगे, मेरा वही स्थान है और जो है मेरा जो आपका सुख है वही मेरा सुख है, जो आपका दुख है वही मेरा दुख है ना, जहाँ आप रहेंगे जो जो कुछ आप कार्य करेंगे वही मेरा भी कार्य है, अगर आप तपस्या करेंगे तो मैं आपके साथ तपस्या करूँगी, अगर आप स्वर्ग में जाएंगे भोगों को तो वहाँ भी मैं आपके साथ रहूँगी, तो भोगों में भी आपके साथ हूँ, तपस्या में भी आपके साथ हूँ, दुख में भी आपके साथ हूँ, विपत्ति में भी आपके साथ हूँ, सब तरह से मेरा और कोई कार्य नहीं है अपना, जो आपका कार्य है वही मेरा कार्य है, जो आपका सुख है वो मेरा सुख है। तो ये बहुत बड़ा एक गुण है। तो अनुसुईया क्या कह रही हैं कि ये सौभाग्य की बात है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो सीते। हाँ, और फिर आगे क्या कहा कि बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा को छोड़ करके तुम श्री राम का अनुसरण कर रही हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और ये श्री राम का अनुसरण ना करें तो बंधु बांधवों से बहुत सम्मान भी मिले हैं, तो वो नहीं चाहिए सीता जी को, वो नहीं चाहिए हैं कि उनको मान सम्मान बहुत मिले हैं और राम को वनवास मिले, तो सीता को वो मान सम्मान नहीं चाहिए। अगर राम का अपमान हो रहा है तो भी उसी में ही रहेंगी, जो भी स्थिति है। त्यक्त्वा ज्ञाते जनम सीते मान वृद्धिम च माननी अवरुद्धम बने रामम दृष्ट्या तुम अनुगच्छसी। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वाय देवा शुभाम यासाम स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासाम लोका महोदया। पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धन ही नहीं क्यों ना हो, वो उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। दुशीला काम वृत्तो वा धनेर्वा परिवर्जिता स्त्री नाम आर्य स्वभावानाम परमम देवतम पति। इसमें एक बात और हमें समझना है कि भगवान कृष्ण कुछ और भी बताते हैं जब गोपियाँ आई रास लीला में कृष्ण की बंसी जब बजी थी तो कृष्ण ने भी ये बात कही, लेकिन एक बात उन्होंने फिर कही कि किस कैसी स्थिति में पति का त्याग करना चाहिए। यहाँ तो हर जगह ही बताया भाई पति का त्याग नहीं करना है, लेकिन कृष्ण जो है एक बार बताते हैं कि इस ऐसी स्थिति में पति का त्याग भी करना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जटो रोगे धनो पिबा पति स्त्री भी नहातव्यो लोके फिर पातकी, कि स्त्री को जो है पति का त्याग नहीं करना चाहिए कि दुशील है यानी बुरे स्वभाव वाला है। दुशीलो दुर्भगो या अभाग्य अभागा है, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो या बूढ़ा है इसलिए भी त्याग नहीं चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो या मूर्ख है तो भी नहीं त्यागना चाहिए। जड़ो रोगी रोगी है पति तो भी त्याग नहीं चाहिए। अधनो निर्धन है पति स्त्री में नहाता भी लोके सूर्य पाते की, लेकिन अगर पापी है तो उसके पाप में साथ नहीं देना। तो भगवान ने जो एक बात बताई है तो वो जो है विशेष रूप से समझने वाली चीज है ना। तो अब हरे कृष्ण आंदोलन में जो देवियां हैं अगर आती हैं तो उनको ये समझना है कि हरे कृष्ण के मार्ग में अगर वो बाधक है पति कृष्ण की भक्ति में अगर बाधक है तो फिर ये नहीं कि पति का साथ देंगी और ठीक है नरक में जाएं। वो कहे तुम नरक में जाओगे तो मैं भी नरक में जाऊँगी, नहीं तो वो नहीं है लोके फिर पा देगी, तो ये बिल्कुल नहीं है, है ना। जैसे कि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे तो पत्नी से पूछा कि मैं जो पाप कर रहा हूँ मेरे सहयोग दोगी, बोले नहीं बिल्कुल नहीं दूंगी इसे, तो साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी, कि पाप का जो दंड भोगना है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूं, तो ये नहीं है। तो इस बात को समझना है ना। तो हर जगह ये आता है कि भाई स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ एक शर्त है जिसमें साथ नहीं देना है बिल्कुल। तो त्याग तो नहीं सकती स्त्री, लेकिन वो भी एक एक प्रकार का त्याग ही है कि आप साथ नहीं दे रहे हैं उसका, तो वो भी एक प्रकार का त्याग ही है ना। तो यहाँ पर अनुसूया जो है ये बता रहे हैं, हे सीता मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती, अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वो इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाता है। ना तो विशिष्टम पश्यामी बांधवम विमृशन्ति अहम् सर्वत्र योग्यम वैदेही तपाकृतम एवाव्ययम्। जो अपने पति पर भी शासन करती है वे काम के अधीन चित्त वाली असाधी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। न तो एवं मनोगच्छन्ति गुण दोषम असत स्त्रियः काम वक्तव्य हृदया भर्तृनाथा चरन्तिया। हे सीते ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। प्राप्नुवन्ते सश्चैव धर्म भ्रंशं च मैथिली अकार्य वशमापन्ना स्त्रियो या खलु तन्विधा। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साधु स्त्रियां हैं वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में लगी रहती हैं, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगी। तन्विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोके परावरा स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्ये कृतस्तथा। कौन कह रही हैं, कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? बहुत से लोग तो सुन नहीं रहे हैं कुछ भी है? कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? अनुसूया सीता जी से कह रहे हैं, सुन नहीं रहे क्या आप लोग? अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री राम की सेवा में लगी रहो, सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो, इससे तुम्हें यश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। तदेव में तम तमनु प्रदा सती पति प्रधाना सम्यानुवर्तिनी भव सुभर्तु सहधर्मचारिणी यश धर्मम च तथा समाप्स्यसि। तपस्वी ने अनुसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि ना रखने वाली सीता ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। सात्वेद मुक्ता वेदेही तनसूया नसूया प्रतिपूज्य वचो मंदम प्रवक्तुम उपचक्रमे। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कौन कह रहे हैं? सीता जी कह रहे हैं। किससे? अनुसूया से। आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है ये बात मुझे भी पहले से ही विदित है। नैरदाचार्य मार्यायाम यन्माम तो मनोभास से विदितम तो ममाप्येतन यथा नार्या पतिर गुरु। मेरे पतिदेव यदि चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। यद्यपि भवेन भर्ता अनार्यो वृत्ति वर्जिता अन्वैध मत्र वर्तव्यम यथा पेश मया भवेन। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री राम परम दयालु जितेंद्रिय दृढ़ अनुराग रखने वाले धर्मात्मा और माता पिता के समान प्रिय हैं। किम पुनर्यो गुण श्लाघ्या सानुक्रोशो जितेंद्रिय स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवन पितृवत प्रिय। श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। याम वृत्तिम वर्तते रामः कौशल्यायाम महाबलः तामेव नपनारीणाम अन्यासाम अपि वर्तते। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया उनके प्रति भी ये धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। सकृत दृष्टा स्वपि स्त्रीषु निपेण नृपवत्सल मातृवन वर्तते वीरो मानम उत्सृज्य धर्मवेन। यहाँ कहने का मतलब है कि दासियों के प्रति भी अगर दशरथ जी कुछ अगर ऐसी दृश्य देखते थे तो श्री राम जो है फिर उन दासियों को भी जो है अपनी माता मानते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था वो मेरे हृदय में ज्यों का त्यों अंकित है। आगच्छन्त्याश्च विजनम वनमेवं भयावहम समाहितम हि मे स्वसुरा हृदय यत् स्थिरम मम। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? सीता जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं अभी अभी क्या कहा? अभी ये कहा कि मेरी सास कौशल्या ने जब मैं वन में आने लगी तो मेरी सास कौशल्या ने जो कर्तव्य का उपदेश दिया था वो मेरे हृदय में ज्यों का त्यों लिखा हुआ है अंकित है। मेरे हृदय में ज्यों का त्यों लिखा हुआ है अंकित है। कौशल्या जी ने भी उपदेश दिया था, यही उपदेश दिया था कि पति के साथ रहना पति की सेवा करना यही उपदेश दिया था। तो सीता जी कह रहे हैं प्राणी प्रदान काले अच्छा हाँ पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। विवाह काल में मेरी माता ने शिक्षा दी थी है ना। सीता की माता कौन है? सुनैना भी कहा गया है। सुनैना कभी कुछ और भी नाम आता है। प्राणी प्रदान काले च पाणी प्रदान काले च यत्पुरा त्वग्ने सन्निधौ अनुशिष्टम जनन्यामे वाक्यम तदपि मे धृतम। हे देवी, इसके सिवा मेरे अन्य सज्जनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है वो भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। न विस्मृतम तुम्हें सर्वम वाक्य स्वैर धर्मचारिणी पति शुश्रूणान पति शुश्रूणा पति शुश्रूषणान नार्यास तपोनान्यन विधीयते। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्ग लोक में पूजित हो रही हैं। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आपने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। सावित्री पति शुश्रूषाम कृत्वा स्वर्गे महीयते तथा वृत्तस्य याता त्वं पति शुश्रूषया देवम्। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ ये स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से बिलग होती नहीं देखी जाती। वरिष्ठा सर्वनारीणाम एषा चादेवी देवताम रोहिणी ना बिना चंद्रम मुहूर्तम अपि दृश्यते। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साधु स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। एवं विधा च प्रवरा स्त्रियो भर्तृ दृढ़ व्रता देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणाम। तब सीता के कही हुए वचन सुनकर अनसूया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा। किसने सूंघा मस्तक? किसका सूंघा? सीता जी का सूंघा। और फिर उन सीता का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, ततो अनसूया संग्रिष्टा तृतोक्तम सीतया वचः शिरसाग्राय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युत। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। क्या बोली अनसुया? हाँ, इच्छानुसार वर मांगो मुझसे। अनसुया कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांगो, क्योंकि मेरे पास तपस्या संचित है। नियम विधेराप्तम तपो ही महदस्ति मे तत्संतृत्य बलम सीते छंदये त्वाम सुचि व्रते। सीते, तुमने बहुत ही युक्ति युक्त और उत्तम वचन कहा है, उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अब तुम बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। अनुसूया जी बहुत प्रसन्न है। उपपन्नम जयुक्तम चा वचनम तव मैथिली प्रीता चास्मिच्युताम सीते करवाणी प्रियम च किम। उनका ये कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। सीता जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनुसूया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया। सीता जी भी आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तस्यास्तन वचनम श्रुत्वा विस्मिता मंद विस्मयाम कृतमित्य प्रवीण सीता तपोबल समन्विताम। सीता के ऐसा कहने पर अनुसूया को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि मांगो, और ऐसे कहे कि मैं क्यों मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बुरा लगता है ना। लेकिन जैसा उन्होंने कहा सीता जी ने, तो वो प्रसन्न हुई। तो ये सब जो है बोलने की कला है। सीता जी और श्री राम जो है ये सब कलाएं जानते हैं, बोलने की कलाएं जानते हैं, कैसे बात करना है किसके साथ में, है ना। तो बहुत शिक्षा वाली बातें हैं ये। सीता के ऐसा कहने पर अनुसूया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीते तुम्हारी निर्लोभता से मुझे जो विशेष हर्ष हुआ है। किससे? निर्लोभता, है ना। नहीं तो मुझे और आभूषण चाहिए, मुझे और वस्त्र चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना। तुम्हारी निर्लोभता से मुझे विशेष हर्ष हुआ है, उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। सात एवं मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीत तरा भवन सफलम चा प्रहर्षम ते हंत सीते करो मैं हम। ये सुंदर दिव्य हार आप दे रही हैं, ये सुंदर दिव्य हार, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाए जाने पर निर्दोष और निर्विकार रहेंगी, कभी गंदी नहीं होंगी। आश्चर्य है ना। इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च अंगरागं च वैदेही महारहं मनुलेपनं मया दत्तं इदं सीते तव गात्राणि शोभयेन् अनुरूपं असंक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति। हे देवी, हे सीते, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं। अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगे जनकात्मजे शोभयस्यसि भर्तारं यथा श्रीर विष्णुम अव्ययम्। अनसुया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी सीता ने उस वस्त्र अंगराग आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया कि ये प्रसन्नता से दे रहे हैं तो प्रसन्नता के कारण लिया कि ये प्रसन्न हुए। सीता जी के अंदर लोभ नहीं है ये सब पाने का, लेकिन प्रसन्नता से दे रहे हैं तो उन्हें प्रसन्नता से लिया कि ये प्रसन्नता का कारण है तो लिया। प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर लिया, उस प्रेम उपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनुसूया की सेवा में बैठी रहीं। सावस्त्र मंगरागम चा भूषणानि सजस्तं तथा मैथिली प्रतिजग्राह है प्रीतिदानम अनुत्तमम प्रतिगृह है चतत सीता प्रीतिदानम यशस्विनी श्रेष्ठांजलि पुटाधीरा समुपास्ते तपोधना। दोनों हाथ जोड़ करके सेवा में बैठी हैं सीता जी, है ना। ये प्रीति लक्षण होता है ना, छह प्रकार के प्रीति लक्षण, ददाती प्रतिग्रहणाती, लेना भी देना भी, है ना, ये प्रीति लक्षण है। तब इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनुसूया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया कि कुछ सुनाओ, है ना। तो ये भी प्रीति लक्षण है, नदाति प्रतिग्रहणाति गोयम आख्याति पृछति, तो पूछ रही हैं अनुसूया कि कुछ सुनाओ तो तथा सीताम उपासीनाम अनसूया दृढ़ व्रता वचनम प्रष्टुमारे भे कथाम कांचित अनुप्रियाम। सीते, इन यशस्वी श्री राम ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, ये बात मेरे सुनने में आई है। स्वयंवर है किले प्राप्ता तो मने न यशस्विना राघवेण तिये मे सीते कथा श्रुतिम उपागता। हे सीते, मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ, सुनाओ विस्तार से सुनाओ, मैंने सुना है कि श्री राम ने तुम्हें प्राप्त किया है, अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ वो सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। ताम कथाम स्रोतुम इच्छामि विस्तरेण च मैथिली यथाभूतम चकार्थनेन तन्मे त्वं वक्तुम अर्हसि। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन तापसी अनुसूया से कहा, माता जी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। एव मुक्ता तु सा सीता तापसीम धर्मचारिणी श्रुताम इति चोक्त्वा वै कथयामास ताम कथाम। अब सुनिए, सीता जी अपनी कथा सुना रही हैं। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं, वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवेन क्षत्रकर्मण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनी। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे, उसी इसी समय में पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई, इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। तस्य लांगड़ हस्तस्य कृषता क्षेत्र मंडलम अहम किलोत्थिता भित्वा जगतीम नृपते सुताम। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे, इतने ही में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, मेरे सारे अंगों में धूल लगी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। समाम दृष्ट्वा नरपतिर मुष्टि विक्षेप तत्परः पांशुगुंठित सर्वांगी विस्मितो जनको भवन। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और ये मेरी बेटी है, ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। जैसे बाल्टी में पानी हो एकदम पूरा उड़ेल दे, ऐसे अपना हृदय का पूरा स्नेह मुझ पर उड़ेल दे, क्योंकि दूसरा पुत्र और पुत्र को स्थिर नहीं है, तो पूरा स्नेह उड़ेल दिया मेरे ऊपर। अनपत्येन च स्नेहा अंकमारोप्य च स्वयं ममेयम तनेत्युक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः। इसी समय आकाशवाणी हुई। क्या हुआ उस समय? आकाशवाणी हुई। इसी समय आकाशवाणी हुई जो मनुष्य की भाषा में हुई थी, मनुष्य की भाषा में हुई थी आकाशवाणी। उसने कहा, किसने कहा? आकाशवाणी ने कहा, हे राजन तुम्हारा कथन ठीक है, ये कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पुत्री है। अंतरिक्षे चवा गोक्ता प्रतिमा मान स्वीकृत किल एवमे तन्नरपते धर्मेण तने आ तब। ये आकाशवाणी सुनकर मेरे पिता बड़े प्रसन्न हुए, मुझे पाकर उन राजन ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पाली है। तथा पृष्टो धर्मात्मा पिता में मिथिलाधिपः अवाप्तो विपुलां वृद्धिं माम अवाप्य नराधिपः। उन्होंने पुण्य कर्म परायणा बड़ी रानी को, जो ने अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मातृ समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। और सीता महारानी को अपना वो सब याद है? किसी को अपने जन्म की याद है? किसी को अपने जन्म की याद नहीं है? लेकिन सीता जी को अपने जन्म की पूरी याद है। और स्नेह भी कितना दिया वो भी सब याद है। पिता ने कितना स्नेह दिया, माता ने कितना स्नेह दिया, वो भी सब याद है सीता जी को। दत्ता चास्मि इष्टवद्देव्य ज्येष्ठाय पुण्य कर्मणे तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मातृ सौहृदान। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, ये कन्या की जो विवाह की अवस्था है ये आयु से नहीं होती है कि कितने साल की है, आजकल वो साल देखे जाए भाई कितने साल की, इससे पहले शादी नहीं होगी। लेकिन जो दिव्य कन्याएं हैं तो वे बहुत जल्दी विवाह के योग्य हो जाती हैं। चंद्रमा की कलाओं के समान वो जो है बड़ी होती हैं। तो 6 वर्ष में ही सीता जी विवाह के योग्य हो गई। 6 वर्ष में, श्री राम 15 वर्ष के थे और सीता जी 6 वर्ष की थी। तो उसी समय ही उनको चिंता हुई। तो ये नहीं है कि भाई 15 साल की हो तभी विवाह होगा, ये नहीं है। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वा तुमे पिता चिंताम अभ्यगमन दीनो वित्तना साधिवा धनः। संसार में कन्या की पिता को सुनिए ध्यान से, कौन कह रहे हैं? सीता जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अनुसुईया से कह रही हैं। तो अभी तो वो एक सिद्धांत बता रही हैं कि मतलब क्या, जो मतलब एक सामान्य बात है। संसार में कन्या के पिता को वो भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों ना हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटे ही क्यों ना हो, प्रायः अपमान उठाना पड़ता है। वर पक्ष के लोगों से अपमान ही उठाना पड़ता है, क्योंकि उसको डर है कि मेरी कन्या के साथ कहीं दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए हमेशा बहुत विनम्र रहता है। नहीं तो वो अपना जो भी गुस्सा है, जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, तो वो आक्रोश मेरी पुत्री के ऊपर ही डालेंगे। तो इसलिए पिता को जो है चाहे जितना भी अपमानित होना पड़े लेकिन वो अपमान नहीं करता है, वर पक्ष के लोगों का अपमान नहीं करता है, तो हमेशा नीचा रहता है पिता। कन्या के पिता को अपमान उठाना पड़ता है। सदृशाचा पितृष्ठाचा लोके कन्या पिता जनान प्रघर्षण मवापनोति सक्रेणापि समो भुवि। वो अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है, ये देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। तो कभी तो ऐसा भी ये चला था रिवाज कि पुत्री जो है जब पैदा होती थी तो दूध पीती, एक जो है उनका वो था रीति रिवाज था दूध पीती, तो दूध में उसका जो है डाल देते हैं तो मर जाएगी, तो पुत्री को जो है इस तरह से मारते थे और ये दिखाने के लिए कि हम दूध पिला रहे हैं और उसका मुंह डाल दिया दूध के अंदर तो मर जाएगी, है ना, क्योंकि हमें जो है अपमानित होना पड़ेगा, हमें नीचा बनना पड़ेगा, है ना। तो इसकी पुत्री को जो है इस प्रकार से मारते थे। वो अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है, ये देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। ताम धर्षणाम अधूरस्ताम संदृश्यात्मनि पार्थिव चिंतार्णं गतः पारम नाश साधाप्लवो यथा। तो और मेरे पिता, सीता जी कह रहे मेरे पिता को ज़्यादा चिंता थी कि मेरे साथ कुछ अन्याय ना हो, तो मैं कहाँ दूँ, किसको दूँ, किसके घर में जाएगी मेरी पुत्री, तो वो चिंता जो है उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जितना प्रेम है अपनी पुत्री के ऊपर उतना ही चिंता भी होगी पिता को, तो मेरे पिता को बहुत चिंता हो गई, क्योंकि उसको जितना मैंने सुख दिया है अब उसको इतना सुख नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगी कहाँ रहेगी, तो चिंता होगी पिता को, तो मेरे पिता को बहुत चिंता हो गई मेरे लिए। ताम धर्षणा मधुरस्थाम संदृश्यात्मने पार्थिव चिंतार्णं गतः पारम नाश साधाप्लवो यथा। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे राजा मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। बहुत चिंता कि मेरी कन्या कैसी है, अयोनिजा है, बहुत दिव्य है, अब ऐसा पति कहाँ मिलेगा, कोई नहीं है। तो मेरे पिता अपार चिंता है। अयोनिजाम हि माम ज्ञात्वा नादे गच्छत् सचिंतयन् सदृशं चाभिरूपं च महीपालः पति ममे। और सीता जी को सब पता है, सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूं। तस्य बुद्धिरियं जाता चिंतयानस्य संततम स्वयंवरम तनुजाया करिष्यामि इति धर्मतः। कितना समय हो गया,
5:25 होने
वाले। अच्छा ठीक है, 5:25। क्या सुना,
एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं पुत्री का स्वयंवर।
हाँ, तो सबसे अच्छा पति जो है मेरी पुत्री को मिले, इसके लिए क्या करूं, है ना। तो उनके विचार आए स्वयंवर करूं। स्वयंवर का मतलब, हाँ, स्वयं ही वर चुने। लेकिन वो स्वयंवर एक विशेष सीमा के अंदर होता है कि राजा जिनको बुलाएगा उनमें से किसी को चुने। स्वयंवर का ये मतलब नहीं है भाई लव मैरिज, कहीं भी जाए अपनी लड़की और किसी से मिले और वैसी लव मैरिज कर दी, वो नहीं है। स्वयंवर का मतलब लव मैरिज नहीं है, पिता ही जो है कुछ विशेष जो चुने हुए युवक होते हैं उनको बुलाता है और उनके बीच में अपनी कन्या को जो है इतनी छूट देता है कि इनके अंदर कुछ किसी को तुम स्वयं वरण करो, है ना। तो ये स्वयंवर कहलाता है ना, तो स्वयंवर करूँगा। स्वयंवरम तनुजाया करिष्यामि इति धर्मतः। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष और अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस दिए। महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना दत्तं धनुर्वरं प्रीत्या तोणे चाक्षय सहायक। सुन रहे सब लोग, वरुण देवता ने एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष और अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस दिए। उनको एक बहुत यज्ञ, कोई बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, उसमें प्रसन्न होकर के वरुण देवता ने एक महान धनुष दिया और दो अक्षय तर कर दिए। अक्षय तर कर इसका मतलब जितने भी बाण निकालो उसमें बाण समाप्त नहीं होंगे, और बाण ज़्यादा नहीं होते उसमें कि बहुत भारी हो, हल्का है, लेकिन बाण जितने निकालो, करोड़ों बाण निकालो, करोड़ों बाण निकलते जाए, और दो अक्षय तर कर। वो धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला नहीं पाते थे। भूमंडल के राजा स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। तो वो धनुष को तोड़ने की बात नहीं थी, धनुष को धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी। तो पहले तो धनुष को उठाएं, फिर उसको झुकाएं और प्रत्यंचा चढ़ाएं, और तब जो है उसको चढ़ाएं, है ना। तो जितने भी राजा थे, मतलब स्वयंवर, यहाँ स्वयंवर में मतलब ये शर्त रखी गई थी कि मेरी पुत्री का पति वो बनेगा जो धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाए। तो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए पहले तो धनुष को उठाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर झुकाना पड़ेगा, फिर डोरी बांधनी पड़ेगी, फिर खींचना है, है ना। तो इसमें क्या बताया कि प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो बहुत दूर है, हिला ही नहीं पा रहे, वो धनुष को ही नहीं हिला पा रहे हैं। असंचाल्यम मनुष्यश्च यत्नेनापि च गौरवात् तन्न सक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाम्। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन राजाओं के समूह में ये बात कही। तद्धनु प्राप्य मे पित्रा व्याहृतम सत्यवादिनाम समवाये नरेन्द्राणाम पूर्व मामंत्र पार्थिवान। जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। इदम च धनुरुद्यम में सज्जम यहाँ कुरुते नरः तस्मै दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहाँ आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ ना हो सके तब उसे प्रणाम करके चले गए। तच्च दृष्ट्वा धनु श्रेष्ठम गौरवाद गिरि सन्निभम अभिवाद्य नृपा जगमुर असक्ता तस्य तोलने। तो स्वयंवर में मतलब वो कोई कोई मतलब कोई स्वयंवर हुई नहीं, और स्वयंवर में कोई स्वयंवर हुई नहीं, कोई वरण हुई नहीं है, कोई योग्य नहीं था, तो सब चले गए, है ना। तो जैसा दिखाया जाता है ऐसा नहीं है इसमें, इस कथा में स्वयंवर में जो जितने आए थे वो चले गए और वो असफल हो गया, वो स्वयंवर का कार्य तो असफल हो गया है। और फिर दीर्घ काल के बाद, फिर बहुत समय के बाद, उसके बहुत समय के बाद ये महातेजस्वी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। तो ये नहीं आए थे स्वयंवर में, ये स्वयंवर में नहीं आए थे, मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए आए। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। जहाँ वर नहीं मिलना था वहाँ वर मिला, और जितना वर प्राप्त करने का प्रयास किया वर नहीं मिला, है ना। सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्ये पराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः। तब वहाँ विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, अब देखो मतलब कैसे घटना का योग बना। विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन ये दोनों श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहेंगे और चले जाएंगे। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि भाई परीक्षा करेंगे श्री राम, शायद उठा लें, शायद चढ़ा लें, ये नहीं है, उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि इतने राजा लोग जो है हिला नहीं पाए हैं, तो ये दर्शन तो करें भाई, कैसी चीज़ है। तो विश्वामित्र जी कहा कि दर्शन करना चाहते हैं ये दोनों राजपुत्र, दोनों राजकुमार दर्शन करना चाहते हैं धनुष का, आप अपना देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। जितनी बात थी अब विश्वामित्री जानते नहीं जानते, वो तो भगवान की लीला अपार है, है ना। तो विश्वामित्र जी लाए, तो इसीलिए लाए थे यज्ञ देखने के लिए, यज्ञ देखने के लिए लाए थे। सब जो है भगवान के द्वारा जो घटित घटनाएं होती हैं तो सब आश्चर्य की घटनाएं होती हैं, कोई नहीं जानता पहले से कि क्या होने वाला है ना। प्रोवाच पितरम तत्र राघव राम लक्ष्मण सुतो दशरथस्यमो धनुर्दर्शन कांक्षिण धनुर्दर्शन रामाय राजपुत्राय दैविकम। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। इत्युक्तस्तेन विप्रेण तन धनुसमुपानयन् तन धनुर्दर्शयामास राजपुत्राय दैविकम्। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। तोड़ना नहीं था, अरे टूटा कैसे है? अब ये प्रश्न उठता है कि टूटा कैसे, तोड़ना थोड़ी था, तोड़ने की तो बात ही नहीं थी, वो तो जो है दिव्य धनुष था और बहुत सम्मानित धनुष था, तो टूटा कैसे है ये अलग प्रश्न है, है? लेकिन उन्होंने तो प्रत्यंचा चढ़ाई थी तो कान तक खींचना था उसको, तो ये जो है एक पराक्रम की जो बात थी वो श्री राम ने की, है ना, तोड़ने के लिए नहीं किया था कुछ भी। तो क्या हुआ, निमेषांतरमात्रेण तदा नम्य महाबलः ज्याम समारोप झटिति पूर्यामास वीर्यवान। निमेषांतरम, निमेश के अंतर में, निमेश जानते कितना होता है, हाँ एक सेकंड का 72वां हिस्सा होता है, 72वां हिस्सा होता है निमेश काल। इतने समय में श्री राम ने धनुष को उठा लिया और डोरी चढ़ा दी और कान तक खींच लिया, इतनी देर में खींच लिया। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वो धनुष बीच से ही टूट गया। अब वो टूट गया तो इसमें कोई श्री राम का दोष नहीं है, कोई असावधानी नहीं है, हैं? वो टूट गया, क्यों टूट गया, बहुत समय से रखा हुआ था। तो सीता जी ने तो कथा को संक्षेप में बताया, लेकिन ये तो उनके बहुत पूर्वज के पूर्वजों को जो है वो धनुष मिला था देवताओं के द्वारा और बहुत समय से रखा हुआ, वो बहुत मजबूत हो गया था कि जिससे कि वो झुके नहीं, जैसे कोई हरा बांस है रखा रखा सूख जाता है तो फिर कड़ा हो जाता है, अब झुकता नहीं और झुकेगा तो टूट जाएगा। तो वो धनुष का कार्य नहीं कर रहा है ना, क्योंकि अब वो जो है मुड़ता नहीं, मुड़ नहीं रहा है। और राम ने उसको मोड़ा तो वो टूटा तो बहुत जोर से आवाज़ हुई, बहुत बहुत जोर से आवाज़ हुई, क्योंकि वो टूटने वाली चीज़ तो थी नहीं, है ना। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वो धनुष बीच से ही टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो। तेना पूरयता वेगान मध्य भग्नम दुधा धनु तस् शब्दो भवद् भीमः पतितस्यासनेर यथा। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया। ततो हम तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसंधिना उद्यता दातु मध्यम में जल भाजन उत्तमम। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। क्या समझे, हाँ कि मेरे पिता जब तक नहीं जानेंगे मेरे पिता का क्या अभिप्राय है, तो श्री राम ने मुझे नहीं ग्रहण किया। तो सीता जी जो बोल रही हैं वो राम का गुण बता रही है, राम का इतना गुण है, है ना। तो ऐसी पत्नी को कौन नहीं पाना चाहेगा, लेकिन श्री राम का जो है कितना मन बस में है कि उन्होंने मुझे नहीं ग्रहण किया। तो सीता जी इसका जो है ये गुणगान कर रही हैं, श्री राम का ऐसा गुण है कि मेरे पिता जब तक ना पता ना चले कि मेरे पिता का क्या अभिप्राय है तो मुझे ग्रहण नहीं किया। दीयमानाम नतो तदा प्रतिजग्राह राघव अभिज्ञाय पितुश्चंदम अयोध्याधिपते प्रभो। तब मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने यानी मेरे पिता ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। तदा ससुर मामंत्र वृद्धम दशरथम नृपम मम पित्रा तो हम दत्ता रामाय विदितात्मने। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप से उनके हाथ में दे दिया। मम सेवानुजा साध्वी उर्मिला शुभदर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयं। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवताम्बरम्। सीता जी ने कितना विस्तार से घटना का वर्णन किया है, लेकिन इस कथा में ना तो परशुराम जी आए हैं उधर और ना दूसरे कोई राजा हैं। यहाँ तो विश्वामित्र जी हैं और राम लक्ष्मण हैं और महाराज जनक हैं और उनके महल में ही ये हुआ या सभा में हुआ, जो भी हुआ, हाँ सभा में हुआ है? तो उनकी सभा के ही लोग थे, है ना, इस तरह से। और परशुराम जी उनको मिले रास्ते में मिले, तो इसमें ये वर्णन आता है कि रास्ते में मिले। धर्म को जानने वाली अनुसुईया ने उस लंबी कथा को सुनकर सीता को अपने दोनों भुजाओं से अंक में भर लिया और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, अनुसुईया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा ताम महतीम कथाम पर्यस्वजते बाहोभ्याम सरस्या घ्राय मैथिलीम। बेटी, तुमने स्पष्ट अक्षरों वाले शब्दों में ये विचित्र और मधुर प्रसंग सुनाया है। तुम्हारा स्वयं जिस प्रकार हुआ था वो सब मैंने सुन लिया। व्यक्ताक्षर पदम चित्रम भासितम मधुरम त्वया यथा स्वयंवरम वृत्तम तत्सर्वम चाश्रुतम मया। सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है, तथापि तेजस्वी सूर्य रात्रि की बेला को निकट पहुंचाकर अस्त हो गए। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे, विपक्षी अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई दे रही है। पहले घड़ी नहीं होती थी, लेकिन इस प्रकार से घड़ी का काम होता था। पक्षियों की ध्वनि आ रही है, घोंसले में आ गए हैं, है ना, तो इस तरह से। रमेयम कथया ते तो दृढ़ मधुर भाषिणी रविस्तम गता श्रीमान उपोह रजनी शुभाम दिवसम परिकीर्णानाम आहारार्थम पदत्रिणाम संध्या काले निलीनानाम निद्रार्थम श्रूयते ध्वनि। ये जल से भेजे हुए बलकल धारण करने वाले मुनि जिनके शरीर स्नान के कारण गीले दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। चाप्यभिषेकार्द्रा मुनिया कलह शोधिता सहिता उपवर्तन्ते सलिला प्लुते वल्कला। महर्षि अत्रि ने विधि पूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म कर लिया है, अतः वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ ये कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकं कपोतांगारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः। अपने इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं, क्या अपने इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त होकर घनीभूत हो गए हैं। थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त घनीभूत हो गए हैं, अंत हाँ घने लग रहे हैं, अंधेरा हो गया ना तो घने लग रहे हैं, अतएव दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। अल्पवर्णा ही तर्वो घनीभूता समन्ततः विप्रकृष्टेन्द्रिय देशे न प्रकाशन्ति वे दिशः। रात को विचरने वाले प्राणी सब ओर विचरण कर रहे हैं, जैसे उल्लू रात को विचरण करने वाले प्राणी सब और विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवन के मृग पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं, पवित्र स्थान में सो रहे हैं। हरण भी रजनीचर सत्वानि प्रचरन्ति समन्ततः तपोवन मृगा हेते वेदी तीर्थेषु शेरते। सीते अब रात हो गई, वो नक्षत्रों से सज गई है, नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित दिखाई देते हैं। संप्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्र समलंकृता ज्योत्ना प्रावरण चंद्रो दृश्यते भ्यूदितोम्बिरे दृश्यते भ्यूदितोम्बरे। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ, जाकर श्री राम की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है। नम्रताम अनुजानामी रामस्यानुचरी भव कथयंत्या ही मधुरम त्वया हम अपि तो सीता। बेटी पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो, क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी होना चाहती हूँ तुम्हें देख करके कि मैंने जो दिया है, है? तो तुम अपने को सजाओ और मुझे दिखाओ, है? सच करके दिखाओ। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो। अलंकुरुच तावत्त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीतिम जनय मे वत्से दिव्य अलंकार शोभिनी। ये सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्र आभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसूया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद वे श्री राम के सामने गई। सात दासम अलंकृत्य सीता सुर सुतोपमा प्रणम्य शिरसा पादौ रामम त्वभिमुखी ययौ। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा तब तपस्विनी अनुसूया के उस प्रेम उपहार के दर्शन से श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। कितना दिया है। तथा तो भूषिताम सीताम ददर्श वदताम वरः राघवा प्रीति दानेन तपस्विन्या जहर्षचाम। उस समय सीता ने तपस्विनी अनुसूया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र आभूषण और हार आदि का प्रेम उपहार प्राप्त हुआ था वो सब श्री राम से कह सुनाया। निवेदयत तथा सर्वम सीता रामाय मैथिली प्रीतिदानम तपस्विन्या वसना भरण सृजाम। तो सब कुछ सुनाया सीता जी ने, जो सुनाया तो ऐसे नहीं सुनाया कि मेरा ये गुण है, बल्कि ये सुनाया कि उनका ही ऐसा गुण है, उन्होंने जो है प्रसन्नता से मुझे दिया। श्री राम और लक्ष्मण सीता का वो सत्कार जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रहिष्टस तो भवन रामो लक्ष्मणश्च महारथा मैथिल्या सत्क्रियां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभाम। ये वस्त्र और जो आभूषण है ये मनुष्यों को नहीं मिल सकते हैं, ये किसी मनुष्य को कोई किसी मनुष्य के देखने में भी नहीं आ सकते हैं। तब समस्त तपस्वियों से सम्मानित हुए श्री राम ने अनुसूया के देह में पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ रात्रि भर निवास किया। तथा स सर्वरीम प्रीता पुण्याम शशि निभाननाम अर्चितस्तापसय सर्वैर उवासय रघुनंदनम। वो रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके तब श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम अभिषिच्य हुताग्निकान आपृच्छेताम नरव्याघ्रो तापसान वन गोचरान। तब धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, श्री राम इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है, यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूप धारी नरभक्षी राक्षस और रक्त भोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। श्री राम जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अवस्था असावधान अवस्था में मिल जाता है उसे भी राक्षस और हिंसक जंतु खा जाते हैं, अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। ये वही मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं, आपको भी इसी मार्ग से इस वन में प्रवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मिलेंगे वो हिंसक जंतु राक्षस और आप उनको मारिए। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कही और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया, तब शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्य मेघों की घटा के भीतर घुस गए। सूर्य मेघों की घटा के भीतर घुस जाएं तो वो प्रकाश ही पैदा करेंगे, हैं तो उनके लिए कोई भय नहीं है कि ये राक्षस हैं या वो हैं कुछ भी हैं। तो ये अयोध्या कांड पूरा हुआ। ये मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ पर जो है इतनी कथा होनी है, लेकिन अयोध्या कांड ये यहाँ पूरा हो गया। इसलिए जो बातें सीता से संबंधित थी उनके अलावा जो अंतिम श्लोक है वो मैंने पढ़ के सुना दिए कि अयोध्या कांड पूरा हो गया। किसी प्रकार से आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? जी जी, अनुसूया का मतलब है, जैसे गीता में भगवान ने कहा है ना, वो श्लोक कैसा है कि श्रद्धावान अनसूयश्च, श्रद्धावान अनसूयश्च, सिद्धावान अनसूयश्च, और क्या है, श्रुणुयादपि वनर, हाँ श्रुणुयादपि वनर, जो श्रद्धावान है और अनसूया, अनसूया का मतलब है दोष दृष्टि ना रखने वाला, दोष ना देखने वाला, जिसकी श्रद्धा है, जिसके अंदर है, अगर वो ना भी समझे तो भी श्रद्धा है उसके अंदर कि ये उपदेश गीता का बहुत दिव्य है, बहुत पवित्र है, श्रद्धा है। अगर नहीं भी समझता तो भी उसके अंदर श्रद्धा है, है, और अनसूया, और दोष उसको नहीं दिखाई देता कि इसमें कोई दोष हो सकता है। अगर कुछ दोष है तो मेरे अंदर है, इस गीता में, गीता के उपदेश में कोई दोष नहीं है। तो सुने यादव ही तो केवल इतना से ही अगर सुनता है सो भी मुक्त, तो वो भी पापों से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो अनसूया का मतलब, अनसूया ये पुरुष के लिए होता है, अनसूया स्त्री के लिए है ना, तो जो दोष ना देखे, फिर भी दोष दिखाई देता है तो ये भी नहीं कि अनदेखा करें। जैसे युधिष्ठिर महाराज है ना, किसी में दोष नहीं देखते थे, लेकिन दुर्योधन मैं उनको दोष दिखाई दिया है तो देखा कि दुर्योधन है। तो ये भी नहीं है कि नहीं हम दोष नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। अनसूया का मतलब है, अब गीता में दोष है ही नहीं, तो गीता में दोष ना देखना ये मतलब एक गुण है, लेकिन जो दुष्ट है तो उसमें दोष ना देखना ये भी एक दोष है। कोई दुष्ट है और उसमें अगर आप दोष नहीं देखते हैं तो ये भी आपका दोष है ना। कोई पवित्र चीज़ है उसमें दोष देखना आपका दोष है, है? जो निर्दोष चीज़ है उसमें दोष देखना भी दोष है, है? और जो दुष्ट है उसमें दोष ना देखना भी दोष है, ठीक है ना। तो ये नहीं, नहीं हम दोष नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है, है? रावण का दोष है, अब आप कहें नहीं नहीं रावण में कोई दोष नहीं है तो आपका दोष, आप दुष्ट हैं। अगर आप कहें रावण में कोई दोष नहीं, अगर आप कहें कंस में कोई दोष नहीं है तो आप दुष्ट हैं। आप कहें दुर्योधन में कोई दोष नहीं है तो आप दुष्ट हैं। तो ये नहीं है कि दोष नहीं देखना है, जो निर्दोष है उसमें दोष नहीं देखना है, और जो दुष्ट है उसमें दोष देखना, तो ये जो है मतलब तरीका है ये, ठीक है। और कोई क्या, फिर से बोलिए। अहल्या, हाँ वो तो सीता के वहाँ जाने से पहले विश्वामित्र जी ले गए थे उसको। हाँ जी, आप
जी आपने बताया कि महाराज जनक को आकाशवाणी सुनाई थी, वो मनुष्य आवाज में सुनाई
थी, और किसकी आवाज में आकाशवाणी? वो आकाशवाणी देवताओं की है, देवता लोग जो है मनुष्य भाषा में भी बोल सकते हैं, देवता लोग ही आकाशवाणी करते हैं। हाँ, स्वयंवर जो है इसको फिर स्वयंवर कैसे कहेंगे, आपका अच्छा प्रश्न है, इसमें विचार करना पड़ेगा कि स्वयंवर, यहाँ स्वयंवर का मतलब ये है कि जो पुत्री, पिता अपनी पुत्री को जो है जो पुत्री है वो अपने पिता के मन के अनुसार अगर विचार करती है तो पिता ने विचार किया कि ये पराक्रम निश्चित किया गया है, हैं? मेरी पुत्री के लिए ये पराक्रम निश्चित किया गया है कि वो मेरी पुत्री का वर होगा, है ना। तो पुत्री भी जो है इस बात को मानती है कि हाँ यही पराक्रम जो है निश्चित है, तो वो फिर स्वयंवर कहलाएगा कि जो पुत्री है तो वो जो है स्वयंवर, इसलिए कहलाएगा स्वयंवर। अब स्वयंवर का मतलब ये भी कह सकते हैं कि पिता स्वयं वर को चुन रहा है, तो पिता की ओर से स्वयंवर हो रहा है कि पिता ने स्वयं पराक्रम निश्चित किया है कि मेरी पुत्री का जो है, तो पुत्री का भी स्वयंवर होता है। कभी पिता स्वयंवर करता है तो स्वयंवरण करता है पिता, तो पराक्रम निश्चित करता है, तो वो भी पिता के द्वारा स्वयंवर हुआ है, अपनी पुत्री के लिए स्वयं उसने वर का चुनाव किया है इस पराक्रम के अनुसार, तो इसको स्वयंवर कहते हैं। और कभी पुत्री स्वयंवरण करती है तो वो कह देती है ठीक है लो वरमाला पहनाओ जिसको तुम चाहो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को भी वरमाला पहना दो, तो पुत्री भी स्वयंवर करती है। कभी पिता स्वयंवर करता है, कभी पुत्री स्वयंवर करती है, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, हाँ जी, हाँ आप बोलिए माता
जी।
हाँ जी, माथा माथा सिर सूंघती हैं, तो सिर सूंघना ये जो है वात्सल्य का एक चिन्ह है, वात्सल्य का जो है ये चिन्ह है। जैसे गाय है अपने बछड़े को चाटती है तो अपना प्रेम प्रकट करती है, चाट चाट करके अपने बछड़े को चाटती है, तो पिता और माता जो है अपने बच्चे का सिर सूंघते हैं, तो ये जो है एक स्नेह का जो है ये वो है। आयु बढ़ती है नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक जो है ये प्रीति लक्षण है कि जो बड़े लोग हैं वो सिर सूंघते हैं, प्रीति लक्षण है। उर्मिला का जन्म बाद में हुआ, सीता पहले, सीता उनको जनक जी को प्राप्त हुई, बाद में उर्मिला का जन्म हुआ। अच्छा, हाँ आप।
उर्मिला जी जो थी वो लक्ष्मण जी के साथ नहीं गई।
उर्मिला जी लक्ष्मण जी के साथ नहीं गई, उर्मिला क्योंकि लक्ष्मण जी सेवा के लिए जा रहे हैं तो उर्मिला से जो है उनको बाधा होगी सेवा करने में, तो उर्मिला जी भी जो है कम नहीं है, उर्मिला जी भी कम नहीं है, तो वे जो है जानते हैं कि मेरे जो पति हैं श्री राम की सेवा में जा रहे हैं, तो वो एक भार बनेंगी, अपने पति की सेवा में बाधा बनेंगी, इसलिए उर्मिला जो है नहीं गई। तो कोई ऐसा आया भी नहीं कि लक्ष्मण जी उर्मिला से कुछ बोलते हैं या उनसे मिलते हैं, तो ऐसा कुछ आया भी नहीं है। लक्ष्मण जी सुमित्रा से आज्ञा लेकर के चले जाते हैं। तो हाँ जी, आप पूछिए। अहल्या पत्थर की शिला कैसे बनी थी, ये तो सब लोग जानते हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा आप? अब पत्थर की शिला कैसे बनी अहल्या, कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताइए। गौतम ऋषि के साप से। हाँ, आप उन्होंने साप क्यों दिया? गौतम, हाँ अहल्या, हाँ तो अहल्या को पता चल गया था कि इंद्र हैं, लेकिन अहल्या ने अपना सौभाग्य माना कि इंद्र भी जो है देवताओं के राजा, और वो जो है अगर मेरे पास आए हैं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, तो अहल्या ने इंद्र को पूरा अवसर दिया। तो जब इंद्र जब निकल रहे थे गौतम ऋषि के वेश में, तो गौतम ऋषि ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि इंद्र है और मेरा रूप धारण करके आया, है ना। और फिर अहल्या को भी देखा तो अहल्या का भी भाव दूषित था, तो अहल्या को श्राप दिया, इंद्र को भी श्राप दिया, अहल्या को भी श्राप दिया। इंद्र को क्या श्राप दिया था, कौन बताए? हजार चक्षु हो जाए, हजार आंखें, तो हजार आंखें हैं तो फिर वरदान हो गया ना,
वरदान
इंद्र को जो है उन्होंने श्राप दिया था कि 1000 योनियां बन जाए तुम्हारे शरीर में, हाँ श्राप दिया। फिर बाद में इंद्र ने जब क्षमा मांगी तो फिर वो 1000 नेत्र बन गए, तो इंद्र को श्राप दिया था। ठीक है, खैर ये तो विषय आज की कथा का नहीं है, आज की कथा में आप लोग कुछ प्रश्न करेंगे। हाँ अच्छा, हाँ क्षमा करिए, अगले इतवार को मेरा जो कार्यक्रम है महिपालपुर में है, तो आप लोग जो है अपना कर लीजिए अगले रविवार का। ठीक है, धन्यवाद। श्री सीताराम कथा महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।